करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वेलकम, स्वागत आप सबका भगवद गीता के इस 13वें अध्याय की चर्चा पर। अब तक हम लोग 12 अध्यायों पर चर्चा कर चुके हैं और अब 13वें अध्याय की चर्चा आज प्रारंभ करेंगे। ये जो 13वां अध्याय है ये प्रमुखतः ज्ञान पथ का वर्णन करता है। 13 से लेकर 17-18 अध्याय तक पहले 6 अध्याय वर्णन करते हैं कर्म मिश्रित भक्ति का, 7 से 12 वर्णन करते हैं शुद्ध भक्ति का और 13 से 18 वर्णन करते हैं ज्ञान मिश्रित भक्ति का। तो अब हम लोग ज्ञान को थोड़ा सा लेंगे। थोड़ा सा कभी कभी कठिन होता है ज्ञान समझना, फिर भी प्रयास करेंगे इस अध्याय को अच्छी तरह से आपको समझाने का। सो आइए फिर अब प्रारंभ करते हैं 13वें अध्याय पर चर्चा। और आई थिंक ये चर्चा हम लोग कुछ गैप के बाद कर रहे हैं, उत्सवों के कारण, कुछ अन्य कारण, यात्रा इत्यादि, इसलिए काफी गैप हो गया, बट फिर भी अभी इसको जारी रखेंगे। सो 13वां अध्याय, यस। सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस 13वें अध्याय को चर्चा जो हम लोग करने वाले हैं अभी। और सो इस अध्याय का शीर्षक है, वैसे इसको कहा जाता है ज्ञान सेक्शन है 13वां अध्याय जिसपे हम लोग कर रहे हैं, प्रकृति पुरुष और चेतना या प्रकृति पुरुष विभाग योगो, योग भी है इसमें, अलग अलग भेद है। सो अब हम लोग इस चर्चा, इस अध्याय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। ये विभाग ज्ञान योग का विभाग है। तो 13वें अध्याय में करीब 35 श्लोक हैं। पहले 7 श्लोकों में भगवान से अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं और कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। और फिर उसके बाद 8वें से 12वां ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण इसमें उस ज्ञान को देते हैं जिसको लेकर हम ये जितने भी कष्ट हैं इस जगत में उससे मुक्त हो सकते हैं, कोई कष्ट नहीं रहेगा अगर उस ज्ञान को हमने स्वीकार कर ली। और फिर 13 से लेकर 19 तक भगवान समझाते हैं कि जो ज्ञान की बात हुई इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है, अर्थात भगवान परमात्मा का विषय देते हैं। और फिर आगे भगवान 20 से 26 तक प्रकृति, अर्थात ये जो मटीरियल नेचर, भौतिक प्रकृति हम लोग देखते हैं, पुरुष, पुरुष मतलब लिविंग एंटिटी, जीवा और भगवान दोनों, और इन तीनों के बीच का संबंध, इसका वर्णन करते हैं। और अंतिम विभाग अर्थात 27 से लेकर 35 तक श्लोक में यहाँ ज्ञान का दृष्टिकोण दिया गया, विजन ऑफ नॉलेज। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है। कई बार लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन अध्याय है क्योंकि इसमें बड़े ऐसे ऐसे शब्द हैं जो समझ नहीं आते हैं, हो सकता है, लेकिन अध्याय बहुत सरल है समझने के लिए। अगर श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनकी शिक्षाओं के आधार पर समझें तो बहुत सरल है। तो अर्जुन ने 6 प्रश्न किए। क्या प्रश्न किए? प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन ने कहा मैं जानना चाहता हूं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है। ये आपने कुछ शब्द पहले थोड़े से कहे थे तो इस विषय में मैं सुनना चाहता हूं। तो भगवान उत्तर देते हैं, प्रकृति का उत्तर। प्रकृति ये जो भौतिक जगत हमें दिखाई दे रहा है प्रकृति कहलाती है। पुरुष जो इस प्रकृति को भोग करता है, जो इस प्रकृति में आनंद लेता है पुरुष कहलाता है। क्षेत्र ये जो फील्ड है जिसमें हम कार्य करते हैं, अर्थात ये जो भौतिक शरीर है हमारा जिसके द्वारा कार्य होता है, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं वो क्षेत्र कहलाता है। और क्षेत्रज्ञ जो उस क्षेत्र को जानता है, जानने वाला। ज्ञान, ज्ञान वो ज्ञान है या ज्ञान की प्रक्रिया जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञेयम उस ज्ञान का लक्ष्य, क्यों ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान इसको उत्तर देते, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रज्ञम इति क्षेत्र इति अभिधीयते, कि ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं इत्यादि भगवान देते हैं। तो शरीर की बात होती है, इसको क्षेत्र माना गया है। सबसे पहले भगवान कहते हैं ये शरीर जो है ये क्षेत्र है। तो ये शरीर किसके लिए क्षेत्र है? हम सब यहां पर इस शरीर में बंधे हैं तो किसके लिए क्षेत्र है? ये शरीर जो बद्ध जीवात्मा, जो बंधा हुआ जीव है उसके लिए क्षेत्र है, मुक्त जीव के लिए क्षेत्र नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुक्त जीव ऐसा कोई शरीर लेते ही नहीं जो बदलना पड़े। हम ही लोग मूर्ख हैं कि हमने ऐसे शरीरों को स्वीकार किया है जो हर बार बदलना पड़ता है, और हम लोग बड़े अहंकार करते हैं उस पर। आज हम सुन रहे थे एक बड़ा अच्छी बात कि जब हम जेल में जाते हैं तो जेल में आपको वो कपड़े दिए जाते हैं, कैदियों के कपड़े। सो कोई भी कैदी के कपड़े में फोटो खिंचाकर अपनी फोटो अपलोड नहीं करना चाहता फेसबुक पे। देखो मैं कैदी बन गया हूं, मुझे मारा जा रहा है, देखो डंडा पड़ा मुझे, कोई नहीं करना चाहता। लेकिन इस जगत में हम देखते हैं कि ये जो जगत है ये बद्ध जीव के लिए एक जेल के समान है, और हमें अलग अलग कपड़े दिए जाते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवान दूसरे अध्याय में बता चुके हैं कि सब कपड़े के समान है। हम लोग जेल में रहकर कैदियों के कपड़े पहनकर बड़े आराम से सेल्फी लेते हैं और उसको अपलोड करते हैं। तो ये मूर्खता है। इसलिए जो शरीर है ये किस लिए है? ये बद्ध जीवों के लिए है। क्यों मिलता है हमें अगर ये हमारा नहीं है? अच्छा कोई कह सकता है नहीं हमारा है, अगर आपका है तो उसको छोड़ना क्यों पड़ता है? छोड़ना तो उसी चीज को पड़ता है जो आपकी नहीं है। तो फिर ये क्यों उसको मिलता ही क्यों शरीर है? शरीर उसको इसलिए मिलता है क्योंकि वो इस जगत में आनंद लेना चाहता है, इच्छा करता है, भोग करना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है। इसीलिए उसको बारंबार शरीर लेना पड़ता है। जितनी इच्छा करता है उतने प्रकार के शरीर मिल जाते हैं उसको। तो कैसे मिलते हैं, किस आधार पर मिलते हैं शरीर? जितनी आपकी क्षमता है, अगर आपकी क्षमता मल खाने की है, गु खाने की है, तो आपको केवल सुअर का शरीर मिलेगा। तो जो आपकी भोग करने की क्षमता है उसके अनुसार शरीर मिलता है। तो जो शरीर है ये क्या है? ये क्षेत्र है, कार्य करने का क्षेत्र है। लेकिन साथ साथ ये जान लीजिए कि ये केवल हमारी इच्छाओं पर हमें मिला है, और यही हमारे लिए सारे दुख का जड़ है। तो आगे अब चलते हैं। शरीर के बताने के बाद भगवान वर्णन करते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब कौन जानता है शरीर को, कैसे समझ सकते हैं? भगवान कहते हैं, समझा रहे हैं, प्रभुपाद भी समझाते हैं कि कैसे हम शरीर और शरीर को जानने वाले के भेद को समझ सकते हैं, तो एक बहुत सुंदर बात से समझ सकते हैं। देखिए, हमारा शरीर बदल रहा है, हम लोग बहुत छोटे से बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर और बड़े हो रहे हैं, और बड़े होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, शरीर बदलता रह रहा है, लेकिन हम वही हैं। 10 साल पहले भी हम जो कह रहे थे हम वही हैं, 25 साल पहले भी वही थे, 30 साल पहले भी वही थे, आज भी वही हैं, लेकिन शरीर बदल गया, अब बच्चे का शरीर नहीं है। तो ये प्रमाण है कि जो मैं हूं और शरीर है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए क्षेत्र से अपने आप की पहचान नहीं करनी चाहिए। ये ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण इस विभाग में दिया जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि पहले 6 अध्यायों में कर्म मिश्रित भक्ति का वर्णन है, या ये कहना चाहिए कि 2 अध्याय में भगवान ने वर्णन किया शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, जो ये है शरीर को जानता है क्षेत्रज्ञ, और उस स्थिति का वर्णन किया जिसके द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। और बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भगवान का वर्णन हुआ, आत्मा और परमात्मा के संबंध का वर्णन हुआ, साथ ही साथ भगवान कृष्ण की परम अवस्था स्थिति का वर्णन हुआ, ये सब वर्णन हुआ। और अब हम लोग आखिरी 6 में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जीव इस जगत में आकर फंस जाता है। सो कृष्ण अब वर्णन कर रहे हैं अर्जुन से, क्षेत्र का बात, प्रकृति, पुरुष, अब क्षेत्रज्ञ, एक और क्षेत्रज्ञ है, एक क्षेत्रज्ञ है आत्मा और एक क्षेत्रज्ञ है परमात्मा, तो उनके अंतर का वर्णन हो रहा है। तो ये वर्णन किया जाता है कि मान लीजिए एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक केवल फल खा रहा है और दूसरा केवल देख रहा है, तो जो खाने वाला है वो आत्मा है, देखने वाला परमात्मा है जो अनुमति दे रहा है। तो यहाँ आप थोड़ा सा भेद देख सकते हैं परमात्मा में और आत्मा में। आत्मा केवल व्यक्तिगत रूप से जानता है, परमात्मा सबको जानते हैं। आत्मा एक ही शरीर की आत्मा है, लेकिन जो परमात्मा है वो परम भोक्ता है या परम स्वामी है सभी शरीरों के। सो इस तरह से हम देख सकते हैं, शरीर को आत्मा भी नियंत्रित करती है, लेकिन आत्मा सीधे नियंत्रित नहीं करती है, वो कहना चाहिए द्वितीय, सेकेंडरी कंट्रोलर है, लेकिन भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और हम सब भगवान के अधीन हैं, भगवान हर एक से परे हैं, कोई भी उनसे ऊपर नहीं है। सो यहां भगवान ये वर्णन करते हैं और फिर प्रकृति, पुरुष और ईश्वर का भेद बताते हैं। 3 ब्रह्म हैं। कई बार लोग कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो 3 ब्रह्म हैं, प्रकृति ब्रह्म कहलाती है, जीव ब्रह्म कहलाता है, भगवान ब्रह्म कहलाते हैं। लेकिन बुद्धिमानी व्यक्ति की इसमें है कि वो तीनों के भेद को बहुत अच्छी तरह समझ ले। जैसे एक उदाहरण दिया गया कि एक चित्रकार है और एक पिक्चर चित्रकारी है और उसको बनाने वाला ब्रश है, तो तीनों को एक नहीं माना जा सकता। इसी तरह प्रकृति मान लीजिए कि वो चित्र है, बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो जीव है, लेकिन इन दोनों का स्वामी कौन है? भगवान। मूल रूप से सही ज्ञान ये है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं। जब तक भगवान की शरण नहीं जाते तो 3 गुणों से बंधे हुए हैं, और जब 3 गुणों से परे जाते हैं तो भगवान से बंध जाते हैं। अच्छा क्या है, भगवान से बंधना और स्वतंत्रता को प्राप्त करना, या गुणों से बंधना और बंधे रहना? तो सच्ची स्वतंत्रता है कृष्ण के ओर जाना। तो अब कृष्ण ये बताते हैं कि जो क्षेत्र के बारे में वर्णन है, क्षेत्र का वर्णन यहाँ हो रहा है, तो उसके विषय में 5 प्रमुख बातें वो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्षेत्र कैसे बनता है, ये कैसे अलग-अलग बदलाव उसमें आते हैं, कहाँ है ये क्षेत्र या बॉडी, ये जो शरीर, और फिर इसको जानने वाला और उसका क्या प्रभाव होता है, ये वर्णन भगवान करते हैं। और इसका वर्णन करने के बाद कृष्ण ये कहते हैं कि मैं ये जो सब कह रहा हूं ये मत सोचो कि मेरे मन की बात है, ये मैं ये जो बड़े बड़े व्यास देव इत्यादि ऋषि भी जो ऋषि हुए हैं उन सब ने कहा है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हम समझते हैं कि भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, उनको तो सारा ज्ञान है, और फिर वो क्यों बता रहे हैं कि ये ऋषि ने कहा वो ऋषि ने कहा, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ने का नियम है। जब हम शास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें अधिकारियों के अधीन रहकर शास्त्र को पढ़ना चाहिए, और जब हम कोई बात कहते हैं तो वो भी हमें अधिकारियों के आधार पर कहनी चाहिए कि हाँ व्यास देव ने कहा है, असितो देवल इन लोगों ने कहा, बड़े बड़े अथॉरिटीज ने कहा है, तो ऐसे हमें कहना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ भी हम लोग देखते हैं इस तात्पर्य में प्रभुपाद कथा उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, वेदांत सूत्र, इन सब से प्रमाण दे रहे हैं कि किस तरह यहाँ इस जगत में बहुत कष्ट है। तो इसको बताते हुए तैतरीय उपनिषद से जब वर्णन कर रहे हैं तो तैतरीय उपनिषद में वर्णन आता है कि किस प्रकार इस जगत में पांच स्थितियां हैं आत्म साक्षात्कार की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सबसे नीची स्थिति है अन्नमय। अन्नमय मतलब हम केवल खाने में जीवन को ढूंढते हैं, बस खाना मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्राणमय स्थिति आती है। प्राणमय मतलब जहां लिविंग फोर्स उसको फिर प्रमुख माना जाता है, अर्थात हम ये मानते हैं कि अब प्राणमय स्थिति में है। ज्ञानमय मतलब हम ज्ञान आ जाता है कि ये सोचने की शक्ति या फिर हमें अनुभव करने की शक्ति, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, ये सब अलग शक्तियां हैं हमारे अंदर। विज्ञान में जहां हम मन और आत्मा के भेद को समझ जाते हैं, और आनंदमय जहां सच्चे आनंद की प्राप्ति करते हैं। या फिर अगर हम इसको प्रोग्रेसिव एक के बाद एक स्टेज लें तो हमारे जीवन में सच्चा आनंद कैसे आ सकता है, वो इन स्टेजेस पर। प्रारंभ में हमारा ध्यान सब खाने पीने पर होता है, बस खाना मिल जाए, पेट भर जाए, मेरा पापी पेट का सवाल है। लेकिन धीरे धीरे हम ये भी जानना चाहिए कि ठीक है पापी पेट का तो सवाल है, लेकिन इससे भी परे कुछ है। केवल पेट भरना ये जीवन नहीं है, ये प्राण आ कहाँ से रहे हैं, ये हवा आ रही है, आवाज हो रही है, ये मैं बोल रहा हूं, इंद्रिया चल रही है, कहाँ से होता है सब, ये जानने का प्रयास करना। फिर उसके आगे जब ये लगा कि हाँ कुछ तो है, तो फिर शास्त्रों में जाना, शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान लेना, और फिर विज्ञान मतलब उसको जीवन में अपनाना। ऐसा नहीं केवल के बस पढ़ लिया, भगवद गीता पढ़ ली, सुन लिया, हो गया जीवन सफल। जीवन में अपनाना विज्ञानमय, और जब ऐसा करेंगे तो आनंदमय, सच्चा आनंद मिल सकता। इसीलिए सच्चा आनंद है केवल खाने पीने सोने में लगे नहीं रहना, अन्नमय स्थिति में नहीं पड़े रहना। थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए जीवन में बहुत कुछ है, उसका ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए, उस ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, और इसके द्वारा अपने जीवन को सफल करने का प्रयास कीजिए। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। तो अब भगवान बताते हैं क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। तो ये जो शरीर है स्थूल शरीर, ये अन्नमय और प्राणमय स्थिति, जब तक हम स्थूल शरीर की बात करते हैं तो उस स्तर पर है, सूक्ष्म शरीर की ज्ञान में, तो ऐसा वर्णन किया। और उसके बाद भगवान बताते हैं जो भौतिक जगत है जिसमें तुम फंसे हुए हो, महाभूत अनहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचम चेन्द्रिय गोचर, ये जिसमें तुम फंसे हुए हो ये सब ये है क्या, 24 तत्व है, इसी में सारा तुम्हारा जीवन है। क्या 24 तत्व हैं? पंच महाभूत, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच महाभूत हैं। महाभूत अनहंकार, अहंकार है, बुद्धि है, अव्यक्त अवस्था है, मन है, ये सारी चीजें हैं, 24 तत्व हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें। और इसीलिए ये वर्णन करने के बाद जब भगवान ने पंचभूत ये सब वर्णन कर दिया, तो अब भगवान वर्णन करना चाह रहे हैं कि उससे क्या होता है, इन सब के जब आपस में आदान प्रदान होता है तो उससे क्या प्रकट होता है। उससे शरीर प्रकट होता है, इच्छाएं प्रकट होती हैं, द्वेष प्रकट होता है, प्रसन्नता प्रकट होती है, और साथ साथ ये शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, संतान उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, मर जाता है, ये सब ये 24 तत्वों का इंटरैक्शन है। और अब इसको सुनने के बाद हमारे मन में आएगा कि क्या इससे बाहर जाने का कोई उपाय है या नहीं है। भगवान जानते थे कि हमारे मन में आएगा विचार, तो इसीलिए उन्होंने अब वो मार्ग दिया है, मुक्ति का मार्ग। मुक्ति ही नहीं, इस जगत में जितने कष्ट हैं, अभी हमने बताया, इच्छा होती है, द्वेष होता है, कष्ट आता है, बॉडीली प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यू, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बीमारियां, तो इन सब से मुक्त होने का अब भगवान इलाज दे। 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक ज्ञान की प्रक्रिया बता रहे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो रूट पर मारो, रूट को खत्म करो। तुम्हारे यहां इस जगत में प्रॉब्लम्स का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हारे जीवन का, हम सबके जीवन में प्रॉब्लम्स का पेड़ बहुत बड़ा हो गया, और हम उसको पानी देते जा रहे हैं, और बढ़ता जा रहे। भगवान कह रहे हैं रूट काट दो, उसकी रूट काट दोगे अपने आप सूख जाएगा। तो रूट काटने के लिए हमें ये गुण लाने जरूरी है, ये नॉलेज होने जरूरी है। तो क्या नॉलेज भगवान ने दी? भगवान ने 20 गुणों को कहा, अमानित्वम मदम्बित्वम महिंसाक्षांतिराजवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, बहुत सारे गुणों को कहा। आइए कुछ गुणों की चर्चा करें, हमारे पास समय उतना तो नहीं कि हम पूरे 20 गुणों की चर्चा करें, 25 गुणों की धीरे धीरे। तो अब पहले कुछ गुणों की लेते हैं। भगवान पहला गुण कहते हैं अमानित्वम। अमानित्वम मतलब हम्बल, मान की कामना नहीं, अमानित्वम हैंकरिंग नहीं, मतलब सच्ची नम्रता वो है जहां भगवान, जहां व्यक्ति ये भूल जाए कि मुझे बहुत मान सम्मान चाहिए, उसके अंदर हैंकरिंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा मुझे मान मिले इसकी कामना नहीं होनी चाहिए, तो वहां ये कहा गया है अमानित्वम। भगवान इसका वर्णन करते हैं इन श्लोकों में, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा। हम लोग सारे तो नहीं जा रहे, थोड़े पे जा रहे, तो अमानित्वम नम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, फिर अमानित्व अदम्बित्वम अहिंसा। अहिंसा क्या है? साधारणता अहिंसा मानी जाती है, अरे आपने किसी को गोली मार दी, किसी को चाकू मार दिया, ये हिंसा है, इसीलिए अहिंसा, किसी को नुकसान मत करो। लेकिन सच्ची अहिंसा क्या है? सच्ची अहिंसा है कि हम किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं पहुंचाए, ये अहिंसा है। केवल मारना नहीं, किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो जीवन में सबसे बड़ा कष्ट क्या है किसी व्यक्ति के जीवन में? कष्ट है कि वो बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूषित है, व्यथित है। तो क्या करना है? सच्ची अहिंसा है उसको उससे बाहर निकालने का मार्ग देना। तमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांतिराचरणम आचार्य उपासनम, ये सब करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या? आचार्य की उपासना। आचार्य उपासना मतलब कि जो गुरु हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, आचार्य कहलाते, था जिन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को शुद्ध कर लिया, ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने ज्ञान को आत्मसात कर लिया, जिन्होंने ज्ञान को, जो ज्ञान कृष्ण ने दिया उसको, भगवद गीता को अपना जीवन बना लिया, ऐसे लोगों से क्या करना है, आचार्य उपासनम, उनसे सुने, नम्रता से उनके पास जाएं, उनसे जिज्ञासा करें, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। तो इसलिए आचार्य उपासना। तो एक भगवान ने कहा अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांतिराजवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। तो भगवान कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं और इनको करना चाहिए। आगे वो कहते हैं एक चीज और समझनी चाहिए ज्ञान के लिए अर्जुन, और वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानि दर्शनम। ये जो जन्म है, ये जो मृत्यु है, ये जो बीमारी है, बुढ़ापा है, इसको दुख समझना है, दुख दोषानि दर्शनम, और इनसे बाहर निकलने का प्रयास करना। जन्म होता है बड़ी खुशी मनाई जाती है, बाकी तीन चीजों में खुशी नहीं मनाते लेकिन जन्म पर मनाते हैं, लेकिन चारों ही दुख का कारण है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसलिए इस चीज को हमें करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान बताते हैं। और आगे भगवान कहते हैं, प्रभुपाद भी लिखते हैं तात्पर्य में कि तब हो सकता है, ये जो सारे 19 आइटम है ये एक आइटम के लिए है, और वो है भगवान की अनन्य भक्ति। भगवान इसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, चानन्य योगे न भक्ति योग। तो भक्ति योग का पालन अनन्य योग से, अनन्य भक्ति भगवान की करनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो भगवद गीता का सार क्या है? भगवद गीता का सार है कि हम अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में रत हो जाए, कृष्ण की भक्ति में रत हो जाए। अगर किसी ने भगवद गीता समझी है तो समझने का अर्थ है वो कृष्ण की भक्ति में लगेगा ही। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे भगवद गीता का पूरा ज्ञान है लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तो फिर भगवद गीता का ज्ञान शून्य है। भगवद गीता कोई बहुत बड़े बड़े श्लोक बोलने के लिए नहीं है, भगवद गीता कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइज ज्ञान यज्ञ ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है। भगवद गीता है कृष्ण की भक्ति के लिए जो सार है, तो उसको हम यहाँ इन श्लोकों में देखते हैं। भगवान ये बड़े महत्वपूर्ण चीज है। तो हमारे अंदर अमानित्व, मदम्बित्व, अहिंसा, शांति, राजवम, सब सरल जीवन होना चाहिए, और हमें गुरु के बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति है जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उनका संपर्क कृष्ण से है, या वो कृष्ण भक्ति में बहुत आगे हैं, कृष्ण के पाने के पथ पर चल रहे हैं, बहुत आगे हमसे, इसीलिए पीछे क्या क्या बाधाएं हैं उसको बता सकते हैं। हमें ज्ञान ले, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम कई बार इस बात को कह चुके हैं और आपके लिए पुनः दोहरा रहे हैं कि अगर जीवन में सच्ची सफलता और शांति चाहते हैं, किसी न किसी के मार्गदर्शन में रहिए, ताकि उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीने से जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो हमें प्रभावित नहीं करें। तो इसलिए इन गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए, ये सच्चे ज्ञान की प्रक्रिया है। अन्यथा इसके परे जो कुछ भी है वो अज्ञान कहलाता है। तो ये यहाँ भगवान इस बात को कह रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारे गुणों को दिया। आज तो हमारे पास इतना समय नहीं कि हम उन सारे गुणों की चर्चा कर सकें। तो ये गुण यहाँ पर हैं जिसको हमें अपने अंदर लाने हैं। तो अब इतना सारे गुण सुने, 18 गुण 20 गुण, हमें तो लगता है कि कैसे रहें, सरल बता दीजिए कि घर में कैसे हमें रहना है। सो घर में रहने का सबसे अच्छा तरीका प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, घर में रहकर जप करिए हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर में रहकर बस जप कीजिए आराम से। दूसरा, कुछ खाना होगा, जप करेंगे तो भूख लगेगी बीच में, तब क्या करें? कुछ खाना है तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। अच्छा, भगवान का प्रसाद भी ग्रहण कर लिया तो अब क्या करें? कुछ सुनना, कुछ बातचीत करना, सो भगवद गीता भागवतम पढ़ें, चर्चा करें उस पर, भगवद गीता भागवतम पर। और फिर जब भगवद गीता भागवतम पढ़े, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, तो उस प्रेम को सेवा के द्वारा कृष्ण के विग्रह पर अर्पण करें। तो बड़ा सरल तरीका है घर में रहने का, क्या क्या कठिनाई है? भगवान के नाम जप करने में किसी को कठिनाई है क्या? मुंह से नाम नहीं निकलता। प्रसाद लेने में क्या कठिनाई है? और फिर भगवद गीता भागवत श्रवण और विग्रह की सेवा। तो ये बहुत सरल मार्ग है घर पे रहते हुए भगवान की भक्ति करने का। लेकिन साथ साथ हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव होना चाहिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कृष्ण के अधीन हूं। ये ज्ञान का प्रारंभ है। अमानित्वम, नम्रता होनी चाहिए। तो क्या नम्रता होनी चाहिए? कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान के अधीन हूं, मेरी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भगवान से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान से कंपटीशन करके जीत जाएंगे और एक दिन बड़े खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मेरी कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस बात को समझते हुए हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। तो आगे ये विभाग जब 20 गुण बता दिए बड़े विस्तार से भगवान ने, तो अब आगे कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्ञान का लक्ष्य क्या है। अर्जुन का ये छठा प्रश्न था, तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो भगवान अब समझाना प्रारंभ करते हैं। तो उसमें भगवान जीव का वर्णन करते हैं, परमात्मा का वर्णन करते हैं। जैसे जीव है जो एक शरीर को जानता है, वैसे तो जीव के लिए ना कोई जन्म है ना मृत्यु है, वो तो फुल पूर्ण ज्ञान में है। इसी तरह जो परमात्मा है, परम जीव है या परमात्मा हृदय में है, वो सब कुछ जानते हैं। और इसीलिए पर इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत आत्मा है उससे वो अलग है। तो कैसे वो सब जानते हैं? तो ऐसे भगवान कहते हैं कि उनके सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह आंखें हैं, सब जगह कान है उनके, सारी जगह उनके सिर हैं। तो ये सब सोचकर तो आता है कि ठीक है, मतलब उनका कोई रूप है ही नहीं। नहीं, गलत धारणा है। भगवान या परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी हैं, लेकिन साथ साथ उनका रूप भी है। जैसे एक सूर्य, तो सूर्य की जब किरणें आती हैं तो किरणों के द्वारा वो सब जगह फैल जाता है, लेकिन सूर्य अपना अस्तित्व बनाए रखता है, सूर्य समाप्त नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कहा जाता कि अरे उसकी किरणें अब फैल गई हैं, अब सब समाप्त खत्म हो गए। नहीं, सूर्य वैसे ही रहता है। तो इसीलिए वो कितनी सारी चीजों को देता है, तो ये हमें जानना चाहिए। तो भगवान कैसे सबके हृदय में रह सकते हैं, ये भी सूर्य के उदाहरण से सीखा जा सकता है। जैसे हम लोग चलते रहते, मान लीजिए आप चलते जाए, सूर्य सर पर है, आप चले गए 100 किलोमीटर दूर चले गए तो भी सूर्य सर पर है। तो जब सूर्य ऐसा हो सकता है तो कृष्ण क्यों नहीं सब जगह हो सकते हैं? तो क्योंकि श्री कृष्ण ये रूप दिव्य है। सो जो भगवान है वो सारी जो हमारी इंद्रियां हैं उनके भी स्रोत है, सारी इंद्रियां उनसे आती है। तो फिर उनकी इंद्रियां नहीं होंगी, ऐसा कैसे होगा? उनका तो बहुत सुंदर रूप है, आंखें हैं, दिव्य आंखें हैं, आध्यात्मिक आंखें हैं, जिससे वो पास्ट देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये भगवान में अंतर है। और ये जानना चाहिए कि भगवान कोई निराकार ज्योति नहीं है, भगवान का रूप है, उनकी इंद्रियां हैं, दिव्य है। निराकार निर्गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी तरह इंद्रियां नहीं है उनकी, हमारी तरह बूढ़ा होने वाला शरीर नहीं है उनका। लेकिन है कौन भगवान? भगवान ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। साधारण मत समझिए उनको। जितनी भी संपत्ति है यहाँ पर, जितना भी धन है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, कहीं भी, वो सब उनका है, वो सब उनकी शक्ति है। भगवान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और सबसे ज्यादा ज्ञान उनके अंदर है। सारे जीवों को वो अकेले पालन करते हैं, इसका वर्णन उपनिषदों में आता है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि एक वो परम व्यक्ति है जो बाकी जितने भी नित्यो नित्यानाम प्लूरल जितने भी लोग हैं उन सब का पालन वो करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जितनी इच्छाएं वो पूरा करते हैं। तो भगवान का ये ऐश्वर्य है। तो फिर प्रश्न आता है कि अगर इतना सब है भगवान का तो महाराज दिखाई क्यों नहीं देते, हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं, हम तो देखना चाहते हैं, हम खड़े हो गए हैं बाहर, हम चिल्ला रहे हैं कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, भगवान नहीं दिख रहे हैं। आप कहते हो कि भगवान बहुत है, दिव्य है, ऐश्वर्य है, रूप है, कहाँ है रूप उनका, दिखाई नहीं दे रहा हमें, बताइए। तो भगवान दिव्य है, और हमारी जो ये आंखें हैं ना, ये भौतिकता से दूषित है। अर्जुन को भी जब विश्व रूप देखना पड़ा, हमने 11वें अध्याय में चर्चा की, भगवान ने कहा मैं तुम्हें चक्षु देता हूं, वो अर्जुन जो हमेशा भगवान के साथ है। तो इसी तरह ये बताने की सॉरी, ये बताने के लिए कि हम लोग इस समय भौतिक दृष्टि से दूषित हैं। जब तक दिव्य या दिव्यता को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक दिव्य मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कृष्ण की भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, उनके रूप को देखना संभव नहीं। तो देखना चाहते हैं आप लोग रूप को, कृष्ण को देखना चाहते हैं, भक्ति कीजिए। ये प्रोसेस है, जैसे आप कुछ चीज मेजर करना चाहते हैं उसका प्रोसेस होता है। आपको लिक्विड मेजर करना है तो आप किलो में, आप इंचेस में नहीं करते हो कि ये 5 इंच का है, 10 इंच का है, हम उसको करते हैं लीटर्स में और इत्यादि उसमें। या फिर कोई टेबल को नापना है तो हम उसको इंचेस में करते हैं, दिस बाय दिस, 10 इंच बाय 12 इंच और समथिंग लाइक दैट। तो हर एक चीज का अलग अलग मेथड होता है, इसी तरह कृष्ण को जानने का एक अलग मेथड, और वो मेथड है दिव्य मेथड, भगवान के नाम का उच्चारण करना, और उसके द्वारा अनुभव का शुरू हो जाता है। आप पहले ही दिन जब चैंटिंग मेडिटेशन शुरू करते हो तो ये अनुभव शुरू हो जाता है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स रेगुलरली हमारे मेडिटेशन सेशंस में आ रहे हैं, समय 2 सेशन हमारे चल रहे हैं गर्ल्स के बॉयज के, सो उनमें से आप में से कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और आपका अनुभव है कि जस्ट मेडिटेशन करने से जो शांति, जो सेटिस्फैक्शन अनुभव हुआ, वो भगवान की अनुभूति है। और आप सोचिए कि केवल एक एक जरा सा एक्सपीरियंस, छोटा सा इतना आनंद देता है, तो जब भगवान प्रत्यक्ष सामने होंगे तो कितना आनंद होगा। तो ये इसीलिए भगवान को हम देख नहीं पाते हैं। तो जो परमात्मा है वो परम सत्य है, जो बाहर भी हैं और अंदर भी, ऐसा कहा जाता है परम सत्य बाहर भी हैं और अंदर भी हैं जीवों के। तो कैसे हैं, परमात्मा के रूप में हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी हैं, मतलब वो दूर भी हैं और पास भी हैं, तो बहुत सूक्ष्म भी हैं और बहुत दूर भी हैं हमसे। तो ये भगवान की वर्णन किया गया है। तो परमात्मा को जब हम देखते हैं, हर एक के हृदय में है परमात्मा, तो ऐसा अर्थ नहीं कि टुकड़े 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 होकर हर एक के अर्थ में, हर एक के हृदय में चले गए। फिर से सूर्य के उदाहरण को देख सकते हैं कि सूर्य एक स्थान पर है, लेकिन हम कहीं पर भी जा रहे हैं, कितना भी माइल चले जाएं तो हमें वहीं सूर्य दिखाई देता है। तो इसी तरह जब सूर्य हर जगह है तो भगवान भी हर जगह है, लेकिन वो डिवाइडेड नहीं है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए हैं अब फिर से एक होंगे और भगवान बनेंगे, नहीं। तो इस ज्ञान को हमें जानना चाहिए। तो सारे ज्ञान का स्रोत और प्रकाश का स्रोत, या कहना चाहिए कि ज्ञान का स्रोत भगवान है। वो कहाँ है, हृदय में विराजमान है, वो सब चीजों को जानते हैं, और वो अंधकार, अज्ञान इत्यादि सबके परे हैं, क्योंकि वो तो प्रकाश के सोर्स हैं। तो इसको समझाने के बाद कृष्ण प्रकृति पुरुष और उनके संबंध को समझा रहे हैं, भौतिक जगत से हमारा क्या संबंध है। अब भगवान उसको हमें समझा रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी अच्छे या बुरे चीजें होती हैं वो इस भौतिक प्रकृति में होती हैं, और भौतिक प्रकृति और जीव दोनों अनादि हैं। अनादि मतलब उनका कोई आदि नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। जीव भी, हम सब भी, हाँ ये मत सोचिए कि हमारा जीवन क्या है। लोग कहते हैं बस जन्म लिया, मृत्यु हो गई, उसके बीच का समय जीवन है, खत्म, न पहले कुछ था न बाद में कुछ होगा। मूर्खता है। अगर ऐसा होता तो हमें किस आधार पर जन्म मिलता, क्यों एक व्यक्ति बहुत अमीर होता है, क्यों एक व्यक्ति बड़ा गरीब होता है, क्यों एक व्यक्ति पागल पैदा होता है और क्यों एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान जीनियस आइंस्टाइन पैदा होता है? तो कहीं ना कहीं कोई कारण है। तो इसीलिए ये नहीं है कि एक जीवन पहले था कुछ नहीं था, आगे कुछ नहीं है, जो करना है इसमें ही करो। नहीं, जीवन इतना नहीं है, हमारा शाश्वत जीवन है। शाश्वत मतलब कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। कितनी सुंदर बात है, हम इस जीवन में पड़े हैं, बस एक दिन मर जाना है। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, एक दिन राम नाम सत, और हमें लगता है बस यही जीवन है। नहीं, इसके परे जीवन की कामना कीजिए, इसके परे जीवन की तैयारी कीजिए। जो लोग बुद्धिमान नहीं है वो इस चीज में फंसे रहते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते, मर जाते हैं और सोचते हमने जीवन में सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया। अगर जीवन में कोई उपलब्धि है तो वो ये है कि वो आपके साथ जा रहा है जीवन के बाद। ऐसे कार्यों को हमें करना चाहिए, तब जाकर हम सही दृष्टि से भगवान को समझ पाएंगे। तो जब भगवान जीव, वही शाश्वत जीव, जब वो इस भौतिक जगत में आता है, किस लिए आता है? एक विद्रोही स्वभाव, मैं भी भोग करना चाहता हूं। तो भगवान जानते हैं कि कब और ये कैसे हुआ, हमें नहीं पता, लेकिन भगवान जानते हैं। लेकिन आत्मा, हमें ध्यान इस समय ये करना चाहिए कि किस तरह हम भक्ति कर कर भगवान के धाम जा सकें। क्योंकि इस जगत में जब हम रहते हैं तो प्रसन्नता होती है, दुख होता है। ये सब इसलिए है क्योंकि हमने प्रकृति से, हमने शरीर से अपनी पहचान बना ली। जैसे हम कोई कार खरीद कर लाते, कार को कोई मार दे तो हमें बड़ा दुख होता। दूसरे की कार का एक्सीडेंट हो जाए इतना दुख नहीं होता जितना अपनी कार पर एक कोई पत्थर मार दे तो दुख होता है। क्यों? हमने आइडेंटिफिकेशन बना रखी। सो जीव इस जगत में अच्छे बुरे चीजों को करते हुए सुख दुख भोग रहा है और इच्छाएं कर रहा है, जिसके द्वारा इस भौतिक जगत में ही केवल संघर्ष कर रहा है। ये जो भौतिक जगत है, ये केवल संघर्ष का स्थान है। अलग अलग रहने के स्थान मिलते, 84 लाख स्थान बनाकर रखे हैं रहने के लिए, लेकिन कैसे मिलते हैं? पूर्व की इच्छाओं के अनुसार, पूर्व के कार्यों के अनुसार। और परमात्मा हर शरीर में हमारे साथ है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या हुआ तुम्हारा पिछले जन्म में, उसके अनुसार ही सब मिलने वाला है। ये संघर्ष हमारा है इस जगत में। भगवान भगवत गीता के कई स्थानों में इस संघर्ष का वर्णन कर चुके हैं। तो जब हमारे अंदर भोग करने की इच्छा होती है तो हम प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है उसको भूल जाते हैं, और फिर ये भूल जाते हैं कि हम सब तीन गुणों के अधीन हैं। हमें लग रहा है हम स्वतंत्र, हम बंधे हुए हैं। इस चित्र में देखिए, हमें व्यक्ति को लग रहा है मैं बहुत काम कर रहा हूं दिन भर, लेकिन वो काम कराने वाले ऊपर से तीन गुण हैं जिन्होंने बांध रखा है, और इसी के कारण हम अच्छे और बुरे कार्यों को करते रहते हैं। और इसके कारण हमारा बारंबार शरीर लेना, बारंबार मृत्यु होना, ये चलता रहता है। तो ये क्या है? कपड़े बदलने के समान है। जैसे एक दरवाजा बंद हुआ, दूसरा खुला, उसमें प्रवेश कर गए, मृत्यु हुई, दरवाजा बंद, जन्म हुआ, दरवाजा खुल गया, नया जीवन शुरू। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में लगना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर उठना जरूरी है। ये जो तीन गुणों से ऊपर उठना, दिव्य स्थिति पर आना, ये बहुत जरूरी है। और ये कैसे हो सकता है ये बदलाव? जब हम श्रवण करते हैं, एक सही व्यक्ति से जब श्रवण करते हैं, जैसे उसका उदाहरण अर्जुन है, अर्जुन ने भगवान से सुना, पूरा परिवर्तन हो गया जीवन। तो इस तरह से हमें इसको करना चाहिए। और फिर भगवान आगे पुरुष का वर्णन करते हैं कि असली पुरुष कौन है। एक तो जीव है और दूसरा असली पुरुष कौन है? तो भगवान वर्णन करते हैं कि वो दिव्य भोक्ता है, परमात्मा। ये कहना चाहिए कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, परमात्मा का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे भगवान का रूप जो सब कुछ जानते, सब ज्ञात। और उस बुद्धिमान कौन है? हम में से बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो अपनी श्रद्धा अपना विश्वास उन भगवान में अर्पित करे। तो ये यहाँ पर वर्णन करते हैं। और ऐसे ज्ञान का फल क्या होता है, जब ज्ञान की सही समझ होती है, तो ज्ञान की सही समझ क्या है, संबंध पता होना चाहिए आत्मा भगवान और प्रकृति इन तीनों के बीच, हमारा इन तीनों के बीच क्या संबंध है ये जानना चाहिए। अगर कोई इसको जान लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है तो वो इस जगत को त्याग कर भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है बड़ी ही आसानी से। तो अलग अलग योग के विषय में भगवान बता चुके हैं पहले, तो ये भी एक ज्ञान योग है जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तो ध्यान योग का वर्णन हुआ, जहां आत्मा को ध्यान के द्वारा देखा जाता है या परमात्मा को, या फिर सांख्य योग हुआ जो ज्ञान ज्ञान का अनुशीलन होता है, कर्म योग जिसमें बहुत सकाम कर्मों को किया जाता है, ऐसे ही ये ज्ञान योग है। सो भगवान समझाते हैं कि जो इस जगत में फंसे हुए हैं वो दो प्रकार के लोग हैं। एक जो आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा रखते हैं, अर्थात वो जानने का प्रयास करते हैं क्या करना चाहिए, फिर वैसे ही कार्य करते हैं जिससे वो इस जगत को छोड़ सके। और दूसरे नास्तिक लोग हैं जो इस आध्यात्मिक चीज को बिल्कुल नहीं समझते हैं। और ये कहने के बाद भगवान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि तुम ये विज्ञान समझना चाहते हो अर्जुन, तो एक ही सरल मार्ग है, बहुत सरल, सबसे सरल मार्ग तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन ज्ञान को समझने का। क्या मार्ग है भगवान, अर्जुन ने पूछ लिया, बता दीजिए सबसे सरल मार्ग। भगवान ने कहा भक्ति करो। भगवान ने कहा मेरी भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, उनको जैसा शास्त्र में जैसा दिया है उसी के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकेंगे। भक्ति प्रसिद्धम भवमोक्षणाय, बहुत सरल है भक्ति, और यही मार्ग है इस सारे कष्टों से दूर जाने का। और फिर अंतिम विभाग की चर्चा प्रारंभ करते हैं भगवान, जहां ज्ञान कदृश ज्ञान के विषय में वो चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं, जो साक्षात्कारी लोग हैं, वो आत्मा और पदार्थ में भेद कर देते हैं, क्योंकि ये सही ज्ञान है। सही ज्ञान है तीन चीजों को देखना, शरीर को, शरीर का जो मालिक है उसको, और परमात्मा को। ये सच्चा ज्ञान है। और कैसे प्राप्त होगा, अच्छे संग से, ऐसे लोगों के संग में आइए जो भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संग कीजिए जो भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संग कीजिए जो सतत भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और निश्चित आपका विजन, आपका ज्ञान बहुत बदल जाएगा। सो भगवान इसका उदाहरण भी देते हैं कि जैसे मान लीजिए आकाश है, तो आकाश किसी चीज के साथ मिक्स नहीं होता, हालांकि वो वहां पर है, लेकिन हवा है, जो भी है, उससे अलग रहता। तो इसी तरह जो आत्मा है शरीर में होती है, लेकिन शरीर के साथ मिलती नहीं है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान इस अध्याय का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते पराम। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो सीइंग विद द आईज ऑफ नॉलेज, ज्ञान चक्षुषः, तो ज्ञान चक्षु, आंखें, आंखों में ज्ञान भरकर देखना, ज्ञान चक्षु से क्या देखना, शरीर को और शरीर से परे आत्मा को, और तब हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सार रूप में इस अध्याय में ये कहा गया है कि हमें सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? शरीर क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, ये सब होना चाहिए और ये मुक्ति का मार्ग है। तो उसके द्वारा हम परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होता कैसे है, ये प्रक्रिया कैसे चलती है? बड़ा सरल है। सबसे पहले एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, जो हमें गाइड करे, जो हमें आगे ले जाए भक्ति के पथ पर, सही मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर। फिर उनको स्वीकार करके क्या करना है? सुनना है, अच्छे लोगों के साथ बैठकर सुनना है। सुनने से शरीर और आत्मा में भेद को ज्ञान लेना है, समझ लेना है, और फिर ये सारी चीजें देखनी है कैसे चल रही हैं, और फिर भगवान आत्मा और परमात्मा उनको अलग अलग जानते हुए आत्मा के रूप में उनकी सेवा में लगना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो ये 13वें अध्याय का सार था। हम लोगों को 1 घंटे के अंदर सार प्रस्तुत करना होता है अध्याय का। इस समय 5 मिनट बाकी हैं। कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, कई दिनों से क्लास कर नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन आप प्रयास करेंगे रेगुलर इसको करने का। ओके, क्विज का लिंक आपको अभी भेज दिया गया है। जो लोग रेगुलर क्विज कर रहे हैं वो लोग उसमें भाग ले लें। यस नम्रता, क्या प्रश्न है आपका?
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सूर्यदेव का जो तेज है वो हर जगह है, तो एक छोटा सा दिमाग में डाउट आया कि जब रात होता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में सूर्यदेव की रोशनी नहीं होती, तो क्या हम उसको इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि उस इंसान के लाइफ में अंधकार ही रहता है जहाँ कृष्ण नहीं होते, या जो कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर इसका कोई और मतलब हो सकता है? और दूसरा,
इसका मतलब एक ही है, जैसे कहा जाता है कृष्ण सूर्य सम माया रा अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया रा अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार, तो जहां कृष्ण है वहां अज्ञान, माया मतलब अज्ञान, तो अज्ञान हो नहीं सकता। तो ये जो अंधकार की बात है, ये उस व्यक्ति का जीवन का वर्णन है जो कृष्ण से परे है और जो सोचता है कि मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा, लेकिन दरअसल अंधकार में है, क्योंकि भगवान से दूर रहकर क्या एंजॉयमेंट किया जा सकता है। यस, और कोई प्रश्न आपका?
यस प्रभु जी, लॉर्ड कृष्णा वो खुद को अर्जुन के सामने भी रिवील किए थे, एंड इनफैक्ट दुर्योधन के सामने भी रिवील किए थे, तो क्या वो बुराइयों के सामने भी अपने आप को रिवील करते हैं? इससे क्या मतलब समझे?
बहुत अच्छा, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने भी अपने आप को रिवील किया और दुर्योधन के सामने भी। भगवान पहली चीज है वो भेद नहीं करते हैं अच्छे बुरे में, क्योंकि उनके लिए सब समान है। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्यस्ति न प्रियः, भगवान कहते मेरे लिए सब समान है क्योंकि वो तो पिता है। लेकिन फिर क्यों अच्छे लोगों के सामने भी करते हैं बुरे के सामने? अच्छों के सामने उनकी भक्ति को बढ़ाने के लिए, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए करते हैं, और बुरों के सामने मृत्यु के रूप में आते हैं और उनका सब कुछ हरण करके फिर से उन्हें कष्ट में डाल देते हैं। तो दो अंतर है, प्रकट दोनों के सामने होते हैं क्योंकि भगवान के लिए दोनों समान है। लेकिन दुर्योधन के सामने जब प्रकट हुए तो दुर्योधन को कोई प्रभाव नहीं हुआ, दुर्योधन ने प्रार्थना अर्पण नहीं की, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, कुछ नहीं किया अर्जुन दुर्योधन ने। उल्टा वो देख रहा था इसको बंदी कहां से बनाऊं, कहां कहां पे रस्सी फेंकूं, कहां से पकड़ूं। तो ये दुर्योधन का भाव था, और उसने बाद में भी कही ये मायावी है, ये ऐसे इसने दिखा दिया। तो दुर्योधन की चेतना पर क्या प्रभाव हुआ? वो और ज्यादा कहना चाहिए तमोगुण में चला गया। लेकिन जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन ने प्रार्थनाएं अर्पण की। तो इसीलिए दोनों को दिखाते हैं भगवान, लेकिन दोनों पर प्रभाव अलग अलग होता है। और जब जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान उनको भी दर्शन देते हैं मृत्यु के रूप में। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मैं ही हूं मृत्यु, क्योंकि व्यक्ति मुझे प्रेम से नहीं देखता, इसलिए मैं जबरदस्ती उसे दिखाता हूं। तो अच्छा तो यही है कि हम प्रेम से भगवान को देखें। ठीक है नम्रता, और कोई प्रश्न है?
प्रभु जी, एक लास्ट प्रश्न है। लाइक अभी हम लोग कलयुग में है तो हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, बट उससे पहले क्या विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी? तो क्या समझे, कृष्ण मतलब कृष्ण पहले थे या विष्णु भगवान पहले थे?
वेरी नाइस। ऐसा वर्णन है, ये जो चक्र चलता है, ये जो चार युग हैं, ये बारंबार आते हैं और बारंबार चले जाते हैं। तो जैसे सतयुग आता है, फिर त्रेता या द्वापर, फिर कलि, ऐसे ही चलता रहता है ये चक्र। तो कृष्ण कई बार पहले भी आ चुके हैं, और उनके बाद विष्णु के कई अवतार आ चुके हैं, या रामचंद्र जी इत्यादि, तो आते रहते। तो अब इनमें ये कहना कि पहले कौन आया बाद में, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये चक्र चल रहा है। और अगर ये चार युग का देखा जाए तो कोई ये प्रश्न कर सकता नहीं, फिर भी अभी तो रामचंद्र जी पहले आए थे ना, तब तो कृष्ण का नाम भी नहीं था। तो एक बहुत सुंदर प्रमाण आपको देते हैं। रामायण में एक वर्णन आता है कि जब परशुराम जी आए गुस्से में, उनका धनुष, शिव जी का धनुष टूट गया था और विवाह हो गया था सीता देवी से, तो उसके बाद परशुराम जी बड़े तेजी से रामचंद्र जी के क्रोध करते हुए, तो उस समय खैर अब हम उस पूरी लीला में नहीं जा रहे, रामचंद्र जी ने उनका क्रोध रोध समाप्त कर दिया और धनुष उनका लेकर उन्होंने एक विष्णु धनुष दिया, उसको भी चला दिया, तीर चढ़ा दिया। फिर उन्होंने क्षमा मांगी, तो जब क्षमा मांग रहे हैं उस समय का श्लोक क्या है, परशुराम जी क्या कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं, यदि मे अनुग्रह हो राम, कि हे राम अगर मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो, तवास्ति मधुसूदन। तो वहां मधुसूदन शब्द का इस्तेमाल किया, तो मधुसूदन तो कृष्ण का नाम है, तो कैसे आ गया रामचंद्र जी को कौन मधुसूदन कहता है? तो ये प्रमाण है कि भगवान का नाम पहले से बहुत है, भक्ति पूजा उनकी बहुत समय से की जाती है, लेकिन अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म हो जाते हैं। जैसे सतयुग में लोग तपस्या करते हैं, तो बड़ी कड़ी तपस्या हो जाती है उनकी, तो इसलिए वो तपस्या पर ही भगवान का स्मरण कर लेते हैं। या फिर जो त्रेता आता है तो उसमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो उसमें भगवान को आहुतियां देकर उनका स्मरण कर लेते हैं, अलग अलग मंत्र बोलकर स्मरण कर लेते हैं। या फिर जब आप द्वापर आता है तो भगवान की, विष्णु की पूर्ण बहुत अच्छी तरह पूजा करते करते वो कर लेते हैं। लेकिन कलयुग है, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो इसमें हमें बस यही करना होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, समृद्धि।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे
प्रभु
कृष्ण,
जी, अगर हमें भगवान को विस्तार से जानना है, उनको समझना है, तो क्या क्या हमको करना चाहिए और हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या भगवद गीता सफिशियंट है उनको जानने के लिए?
भगवान को जानने के लिए तो भगवान को भी मुश्किल हो जाती है कि कैसे जाने। भगवान अनंत है और हर क्षण उनके ऑपुलेंसेस बढ़ते जाते हैं, तो सफिशियंट तो कुछ भी नहीं है, भगवान इतने विस्तार से हैं। लेकिन हाँ, अगर हम उनसे प्रेम करने तक कि उन इतना ज्ञान हो जाए कि हम उनसे, हमारा प्रेम उनके प्रति बहुत आगे आ जाए, तो उसके लिए भगवद गीता बहुत है। लेकिन भगवद गीता हमें हमारे जो सिद्धांत है उनको मजबूत करती है। उसके बाद हमें प्रेम की ओर या उनसे प्रेम करने जाना है तो भागवतम पर जाना पड़ता है। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता ये कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और भागवतम ये भगवान के विषय में ज्ञान है कि कौन है वो, क्यों भगवान है, कृष्ण भगवान क्यों है, ये भागवतम है। इसलिए हमें भगवद गीता और भागवतम दोनों पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ओके। सो यहाँ एक शब्द प्रश्न है, कृष्ण प्रमुख हैं या विष्णु? वैसे आई थिंक कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है। प्रमुख ये है कि हम जब भी हमें जानना हो कि कृष्ण है कि विष्णु है कौन है, हम अपने मन से तो कुछ नहीं कह सकते कि हम कह हमें लगता है कि विष्णु, हमें लगता है कि कृष्ण है, नहीं। मुख्य बात है शास्त्र क्या कहता है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, शिव जी रुद्र गीत में क्या कहते हैं, पद्म पुराण में क्या लिखा है, अन्य उपनिषदों में क्या लिखा है, उनका सार ये है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे भागवतम में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो इसीलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है शुभजीत, क्या प्रश्न है आपका?
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सारे जगह पे कहा जाता है जिनको अच्छा गुरु नहीं मिलता तो उनको दक्षिणामूर्ति का प्रार्थना करना है, तो क्या है दक्षिणामूर्ति और कैसे प्रार्थना करना?
वैसे एक ये कहा जाता है कि अगर गुरु सही नहीं मिल रहा है या मिलना है तो हमें बड़ी तीव्रता से भगवान से सीधे प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जो मूर्ति का वर्णन है, दरअसल जो भगवान हृदय में स्थापित हैं वही चेत गुरु के, चेत गुरु मतलब जो चित्त में है वही हमारे लिए बाहर एक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। तो हम किससे प्रार्थना करें? तो हम प्रार्थना करते हैं उन मूर्ति से जो हृदय में विराजमान है कि आप ही हमें ज्ञान देने के लिए गुरु के रूप में सामने आइए। तो फिर भगवान वो व्यवस्था करते हैं। जब हम तीव्र इच्छा करते हैं कि नहीं मुझे अभी, मैं थक गया हूं अभी ये सब चीजों से, मैं जानना चाहता हूं कि कैसे बाहर जाना है, क्या करना है, तो भगवान कहते रुको मैं भेज रहा हूं, फिर भगवान भेज देते हैं। ठीक है हरे कृष्ण। कौन है? प्रीति।
हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा
प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न है। अभी जैसे आपने भगवत गीता और भागवतम से रिलेटेड बात बताई कि उसे भगवान कृष्ण ने कहा है और वो भगवान कृष्ण के विषय में है, तो बाकी जो हमारे शास्त्र पुराण और वेद हैं, तो क्या कलयुग में प्रभु जी हम ये समझे कि इनका कोई महत्व नहीं? प्रभु जी
ऐसा नहीं है, चाहे कलयुग हो सतयुग हो, हर शास्त्र का बड़ा महत्व है, लेकिन हर शास्त्र पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं होता है। इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ने सबसे पहले बहुत से शास्त्रों का रचना की, वेदों को चार भागों में बांट दिए, पहले एक ही वेद था उसको चार कर दिए, फिर उसके बाद उपनिषद लिखे, फिर संहिताएं दी, फिर पुराण दिए, और 18 पुराण होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे, तो फिर नारद मुनि ने उनको डांटा कि तुमने जो भी किया है इन सारे पुराणों में, इसमें दिया है भक्ति लेकिन सीधे जो भगवान है उनका गुणगान कहीं नहीं किया, इसीलिए ना तुम संतुष्ट हो ना जो पढ़ेंगे वो संतुष्ट होंगे। तो फिर व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, या उससे पहले उन्होंने वेदांत सूत्रों की रचना की थी, मतलब सारे शास्त्रों का सार वेदांत कहलाता है, और वेदांत पे भाष्य या वेदांत को समझाया गया है भागवतम में, तो अंत में उन्होंने की और जिसके द्वारा सार मिलता है। तो सारे शास्त्रों का मूल्य है, पद्म पुराण हो कठोपनिषद हो कोई भी हो, मूल्य उसका कम नहीं होता है, लेकिन क्योंकि इस समय में उनको समझाने के लिए इतना समय नहीं है, लोगों के पास हजारों साल तक जीवित नहीं रहेंगे, तो इसीलिए बड़ी सरलता से उसको समझने के लिए कुछ भागवतम और भगवद गीता को दे दिया गया है। तो इसलिए अगर हमें कोई प्रमाणिक गुरु मिले जो अन्य चीजों को भी पढ़ा रहे हों तो कोई गलती नहीं है, लेकिन अंततः सार वही निकलेगा जो भागवतम में दिया गया है।
जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न था, प्रभु जी हम दीक्षा लेने के योग्य कब होते हैं प्रभु जी? मतलब कब हमें ये मतलब लगना चाहिए कि हमें अब दीक्षा ले लेनी चाहिए?
वैसे तो एक शिष्य को कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस दिन लगेगा कि मैं योग्य हूँ उस दिन बिल्कुल अयोग्य है, हम कैसे कह सकते हैं अब योग्य हो गया हूँ, अब गुरु मुझे रोक ही नहीं सकते हैं।
नहीं प्रभु जी, जैसे कि मैं कुछ ऐसे भक्तों से मिली जैसे जो उनका मतलब मेन फोकस होता है, जैसे जिनको कुछ टाइम में जुड़े हुए होता है, तो मतलब वो कहते हैं कि जल्दी से IDC कोर्स कर लो, आप दीक्षित हो जाओ। प्रभु जी क्या ये सही है? बस मैं यही जानना चाह रही थी। हरे
नहीं,
कृष्ण।
ऐसा नहीं है। जब तक हमारे हृदय में एक गुरु को स्वीकारने की तीव्र इच्छा ना हो, तब तक हमें दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो तीव्र इच्छा होनी चाहिए हमारे हृदय में कि हमें अब गुरु को स्वीकारना है, तब फिर व्यवस्था देखनी चाहिए और फिर अच्छे एक सही गुरु को ढूंढना चाहिए और फिर हमें दीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है।
ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
ओके युदीप।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु
हरे कृष्ण।
जी, जो मृत्यु के बाद परमात्मा जो है वो उसका क्या होता है, वो कहाँ पर जाती है?
परमात्मा सदैव जीव के साथ रहते हैं। जब जीव नरक में जाता है तो भी परमात्मा भी जाते हैं वहां पर साथ में, देखने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि वो विटनेस है ना। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। तो विटनेस है तो सब चीजों का विटनेस करना। अच्छा, इसको अभी नरक में इतना दंड मिला, अच्छा ये हुआ सब। भगवान दरअसल, ये भगवान का प्रेम है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ते, और इसीलिए जहां भी जाते हैं हम, वो भगवान साथ में रहते हैं। तो मृत्यु के बाद भी जहां जहां जीव जाता है, परमात्मा उसके साथ रहते हैं। जब तक जीव इस जगत में है, परमात्मा साथ में है। जब वो मुक्त हो जाता है, तब परमात्मा नहीं रहते, क्योंकि वहां तो साक्षात भगवान सामने होते हैं। ठीक है युधिष, प्रश्न का उत्तर मिल गया।
ठीक ठीक है प्रभु जी। और मेरा एक प्रश्न है, जो हमारे कर्म है वो कहाँ पर स्टोर होता है? सूक्ष्म शरीर पर और कहीं पर?
सूक्ष्म शरीर निश्चित। ठीक है। ओके समीर। आपकी आवाज नहीं आ रही समीर। हम आपको म्यूट कर रहे हैं, आप एक बार और अनम्यूट कीजिए अपने आप। सॉरी, आप अनम्यूट तो हो गए हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कीजिए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मे बी शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। अपर्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे
जी
कृष्णा।
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कहा गया है कि भगवान शंकर परम वैष्णव है ना?
जी
तो उनकी और कहते हैं कि वैष्णव की या भक्त की पूजा करना मतलब उनकी पूजा करना सफिशियंट है क्या? तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने करने का मतलब उतना महत्व नहीं है कि अगर हम भगवान शंकर की पूजा करके सफिशियंट है? कि कुछ लोग सिर्फ भगवान शंकर को ही मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करते हैं। और रामायण में भी भगवान श्री राम ने ये कहा है कि मुझे तभी पा सकते हो जब आप शंकर भगवान की पूजा करते हो। तो मतलब कि अगर हम राम और भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण की पूजा तभी सक्सेसफुल है कि जब हम भगवान शंकर की भी पूजा करते हैं उनको भी।
बहुत अच्छा है। सी, वो वैष्णव है निश्चित। सो अगर हम उनकी पूजा करें, केवल उनकी पूजा करें और कृष्ण की पूजा नहीं करें, क्या उनको अच्छा लगेगा? जैसे मान लीजिए कि आपके कोई इष्ट देव हैं या कोई गुरु हैं और हम आपको ही पूजा कर रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो जो वैष्णव होते हैं वो तो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हैं। सो उनके लिए केवल अपनी पूजा कराना वो संतुष्ट नहीं है। हाँ आप उनकी पूजा करो किस लिए, कृष्ण को पाने के लिए, वो ठीक है। जैसे आपने रामायण का कहा तो यस भगवान ने कहा क्योंकि वैष्णवों के द्वारा ही, भक्तों के द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जाता है, वैष्णव परम वैष्णव है, तो इसीलिए वो एक मार्ग है। शिवजी चार संप्रदायों में से एक संप्रदाय के प्रमुख हैं, इसीलिए वो एक मार्ग है कि शिवजी के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचा जाए। लेकिन अगर कोई केवल शिव जी की पूजा कर रहा है, कृष्ण को नहीं कर रहा, तो वो सही नहीं है। क्योंकि कृष्ण शिव जी का महत्व हम अगर वैष्णव के रूप में देखें तो वैष्णव मतलब जो भगवान के परम भक्त है। तो जब भगवान को हटाकर, जैसे हम लोग अपने मंदिरों में श्रील प्रभुपाद की भी पूजा करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि कृष्ण को हटा देते हैं और केवल श्रील प्रभुपाद की पूजा, नहीं, कृष्ण मंदिर में ऑल्टर में है, प्रभुपाद बाहर है, हम उनके भक्त के रूप में पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, वो सब ठीक है। तो इसलिए ज्ञान के साथ अगर करें, और अगर शिव जी से केवल ये प्रार्थना करना हो कि शिव जी मुझे कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ाओ, कृष्ण को समर्पण में आगे बढ़ाओ, तो कोई गलती नहीं है शिव जी से भी प्रार्थना करने में, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो इस समय फॉर्म का लिंक आपको भेजा हुआ है, जिसने नहीं भरे कृपया भर दीजिए, कुछ समय के लिए ये ऑन रहेगा। प्रियंका आपका कुछ प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन
आपको पूछे।
यस
मॉर्निंग में मंत्र मेडिटेशन करना पहले करे या योगा पहले करे, व्हिच इज मोर बेनिफिशियल?
मॉर्निंग मंत्र मेडिटेशन और
योगा जॉगिंग वगैरह से?
वेल बोथ आर रिक्वायर्ड, दोनों होना चाहिए ताकि हेल्थ भी अच्छी रहे और शांत। लेकिन सुबह का समय ये सबसे पहले ध्यान के लिए है, थोड़ा सा लेट हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, लेकिन मेडिटेशन का समय सुबह का बहुत अच्छा होता है, सत्वगुण का होता है। सो हमारा सजेशन है दोनों कीजिए, थोड़ा देर सुबह पहले ध्यान मेडिटेट कर लीजिए, टाइम एडजस्ट कीजिए, और फिर आप एक्सरसाइज जॉगिंग वगैरह जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं।
थैंक्स प्रभु जी।
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
ओके और एक क्वेश्चन है, प्रिशा मालविया।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा।
जैसे आप अभी आप बता रहे थे कि कृष्ण भक्ति के लिए चार समुदाय होते हैं और उसमें एक समुदाय शिव जी है, तो बाकी तीन समुदाय कौन से प्रभु जी आप?
बाकी तीन संप्रदाय हैं, एक शुरू हुआ है लक्ष्मी जी से, एक शुरू हुआ है चार कुमारों से, और एक शुरू हुआ है ब्रह्मा जी से। इस समय अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो वृंदावन में चारों संप्रदायों के एक स्थान है अभी भी, और अलग अलग जगह पर भारत में इन चार संप्रदायों के कहीं ना कहीं पूजा इत्यादि चलती है। जैसे ब्रह्मा जी के ज्यादा जो संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहते हैं, तो उनकी पूजा इत्यादि उडुपी कर्नाटक में चलती है। श्री संप्रदाय का प्रमुख तिरुपति में है, तिरुपति कांचीपुरम इत्यादि, वहां सब श्री संप्रदाय वाले पूजा करते हैं। और कुमार संप्रदाय या इनके जो पुष्टि मार्गी कहलाते हैं, वो आप गुजरात में या नाथद्वारा उनका प्रमुख स्थान है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर वो सब चलता है, करते हैं। तो चार ये प्रमुख संप्रदाय, ठीक है। ओके एक लास्ट प्रश्न, नम्रता।
यस प्रभु जी, प्रभु जी व्हाट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अस, रीडिंग भगवद गीता बाय ऑन और लिसनिंग इट टू सम ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर लाइक यू फ्रॉम यूट्यूब अगेन एंड अगेन?
बेटर टू फर्स्ट हियर ऑन द यूट्यूब एंड देन रीड, बिकॉज़ इफ यू रीड ऑन योर ओन यू वोंट अंडरस्टैंड।
यस प्रभु जी,
मेन पर्पस ऑफ रीडिंग इज नॉट जस्ट टू रीड, जस्ट गो थ्रू द पेजेस, इज टू अंडरस्टैंड। So we can hear and then read we will understand it definitely. And even if you don't understand, write down. Take when you're reading, जब आप पढ़ रहे हो तो एक डायरी साथ में रखो, जहां जहां नहीं समझ में आए प्रश्न लिखिए, एंड देन व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू आस्क समवन यू शुड आस्क।
ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके सो आप सबको पॉसिबली अब नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इसको। कल हम थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं, सो आई डाउट कि हम कल कर पाएंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए नेक्स्ट सैटरडे, सैटरडे संडे, फिर अब दो तीन हफ्ते में इसको कंप्लीट कर देंगे। जस्ट 6-5 अध्याय बाकी हैं ओनली, सो इट विल बी ओवर। हरे कृष्णा। सो प्लीज फिल अप द फॉर्म, जिन्होंने नहीं फिल अप किए हैं।